ओम शांति। दीदी को सभी एक हाथ से वेलकम करेंगे। आप सभी फरिश्तों के बीच में हमारे आदरणीय फरिश्ता दीदी गीता दीदी हम सबके बीच में अपने जीवन के अनुभव और जीवन में जो बाबा से प्राप्तियां व शक्तियां जो हुई हैं उन गुणों और शक्तियों को लेकर के हम सबके बीच में आज विषय लेकर आए हैं प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी कि उसके आधार से हमारा जीवन जो योगी जीवन है कैसे सहज हो। तो दीदी का दो लाइन में मैं परिचय देना चाहती हूँ। वैसे आप सभी तो जानते ही हैं, सभी जानते हैं दीदी को। गीता दीदी का नाम ही हम रोज मुरली में सुनते हैं और नाम ही उनका है गीता, जो बाबा के बनने के बाद आप अपने नाम को सार्थक करते हुए अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देते हुए अनेक आत्माओं का जीवन उद्धार करते हुए आपको 50-60 वर्ष से अपना समर्पित जीवन सेवाओं में लगाया और विशेष आप देश विदेश और खास मधुबन में अपनी सेवाएं देते हैं, अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं अपनी वाणी से। गीता ज्ञान का जो सार है उस सार को आपने अपने जीवन में धारण किया है। कहते हैं, बाबा भी कहते हैं ना कि ज्ञान जो है मुरली है वो पूरा ही गीता ज्ञान है और आपका जो जीवन है वो एकदम प्रैक्टिकल धारणा है गीता ज्ञान का और उसी को लेते हुए आप अनेक आत्माओं को और शक्तिशाली बनाते हैं अपनी वाणी से। तो आज दीदी हम सबके बीच में हम सभी को शक्तिशाली बनाने के लिए आए हैं, आदरणीय गीता दीदी।
ओम शांति। दो मिनट खड़े हो जाएंगे ना, कब से बैठे हैं। हॉल में राउंड लगा के आई, वन बाय वन इधर से शुरू कर लाइन से धीरे धीरे बाबा की याद में, हाँ उस तरफ ऐसे राउंड लगा के आई। चलो चलो चलो, पीछे तक जाना है, बीच से आ गए आप तो पीछे तक जाओ, स्टेप्स नहीं चढ़ो पर पीछे तक जाओ। हाँ हाँ, साइकिल ऐसे घूमे। धीरे धीरे भाई, थोड़ा दो मिनट। वाह, माता है तो स्टेप्स भी चढ़ गए। पूरा साइकिल बनाना है, स्क्वायर स्क्वायर बनाना है माता, इकट्ठे नहीं होना, स्क्वायर। हाँ यहाँ आ जाओ, पहला नंबर जो है वो यहाँ आ जाए। अपने अपने कुर्सी के आगे माना, अपनी अपनी नहीं, फर्स्ट लाइन। हाँ डिस्टेंस रख के खड़े रहना है, इतना एक दो के हाथ पकड़ सके इतना अंतर रखो। हाँ इधर भाई, लास्ट में आप घूम के बैठना अभी ऐसे। हाँ बस इतना डिस्टेंस रखो ताकि हाथ पकड़ सको एक दो का, जब मैं कहूँ तब। थोड़ा इधर, हाँ ये थोड़ा क्लोज, थोड़ा सा हाँ उस तरफ, सर्कल के अंदर देखना है, सर्कल के अंदर देखो। ये आप लोग घूम जाओ, बाकी सब ठीक है। लाल लाइट रखी, थोड़ा इधर कंजेस्टेड, थोड़ा इधर जाओ, इस तरफ इस तरफ इस तरफ ज्वाइन करना है। हाँ थोड़ा इधर आओ बहने, पीछे वाली। हाँ और बस राइट साइड घूम जाए, राइट साइड, हर एक अपना अपना देखो, राइट साइड। मेरी राइट साइड जो भी आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, ये भी बाबा के मददगार बच्चे हैं। नई दुनिया की स्थापना के कार्य में हम सब बाबा के साथी हैं। शुक्रिया इन सभी आत्माओं का, जो अपने पवित्र जीवन से बाबा के कार्य में मददगार है। हमें मिलकर पावन दुनिया स्थापन कर दी है। सर्कल के अंदर तरफ हो जाए, लेफ्ट साइड घूमे, मेरी बाएं साइड जो भी आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं, कल्प पहले भी हम मिले थे, अपनी विशेषताओं से विश्व कल्याण के कार्य में बाबा के साथी थे। दो युग, सतयुग और त्रेता युग में हम ही भिन्न भिन्न नाम रूप में साथ साथ पार्ट बजाते थे। शुक्रिया इन सभी आत्माओं का, जो तन मन धन से बाबा के रचे विश्व कल्याण के यज्ञ में स्वाहा हुए। ड्रामा की विशेष पार्टधारी ये सभी आत्माएं हैं। सर्कल के अंदर घूम जाए, नीचे देखें, इस पावन भूमि का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तपोभूमि ने इस वरदानी भूमि ने प्यारे बाबा मम्मा और दादियों की तपोभूमि ने हमें भी पुरुषार्थ करने में मदद की है। इस बेहद यज्ञ में रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल से हमें नेचुरल योगी बनने में मदद मिलती है। बाप दादा का घर हम बच्चों का घर, ऊपर देखें प्यारे बाबा का शुक्रिया, जो एक्यूरेट समय पर सृष्टि पर आकर हमें अपना बना लिया। प्यारे बाबा का समय पर आना, सद्ज्ञान देना, हमें पवित्र योगी बनाना, बाबा का बहुत उपकार है। एक दो का हाथ पकड़े बहने बहनों के साथ, भाई भाइयों के साथ, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा हम संगठित होकर एक दो के सहयोगी बनकर बाप समान संपन्न और संपूर्ण जरूर बनेंगे। हम मिलकर एक दो को सहयोग देकर बाबा का विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करें। बाबा की प्रत्यक्षता के माध्यम बनेंगे। श्रीमत अनुसार संस्कार मिलन की रास रचाएंगे। हाथ नीचे, बाबा के सामने हो जाइए। प्यारे बाबा, हम आपका नाम रोशन करेंगे। यज्ञ को निर्विघ्न बनाएंगे। अपने जीवन से चेहरे और चलन से बाप दादा को प्रख्यात करेंगे। अपने स्थान पर जाकर चक्र पूरा करके अपने स्थान पर जाकर बैठ जाए। ये माताएं तो बैठती जाए, जिन्होंने चक्कर पूरा कर लिया वो बैठते जाए। ओम शांति। हमारा अभी का विषय है प्यूरिटी की पर्सनालिटी एंड रॉयलिटी। बाबा का मुख्य कार्य हमें पावन बनाना, मुरली में बाबा हमें स्पष्ट कहते हैं कि मैं आया ही हूं पतितों को पावन बनाने। हमारा विद्यालय भी यज्ञ भी पवित्रता के कारण ही विश्व में प्रसिद्ध है। कि पवित्रता इन भाई बहनों में इतनी है, जो भाई बहन की तरह रहते हैं दुनिया में, ये बात शुरू से प्रसिद्ध है। तो जो बाबा का मुख्य कार्य है, जिस धारणा से विद्यालय विशेष है, उसमें तो हमें जरूर मास्टरी प्राप्त करनी है। जैसे ही अपने आप को पहचाना, बाबा को पहचाना, समय को पहचाना, तो हम सब ने खुद की ही स्फुरणा से अपने जीवन को पवित्र बनाया। कोई एक दिन में ही पवित्र योगी बन गए, कोई 3 दिन के शिविर करके बन गए, कोई 7 दिन में बन गए। बाबा के सत्य ज्ञान की ये शक्ति कि आत्मा को पवित्र जीवन पसंद आ गया, हमें मुश्किल नहीं लगा। ये निशानी है हम देवता घराने की आत्माएं हैं। उनको ईश्वरीय नियम मर्यादाएं सहज लगेंगे, मुश्किल नहीं लगेंगे। हम सबका अनुभव यही है कि जब से बाबा के बने हम महसूस करते हैं कि सही जीवन अब शुरू हुआ। दुनिया वाले सोचते हैं कि इतनी ग्रस्त में रहकर पवित्र बनना पॉसिबल नहीं, इतने युवा भाई बहने कुमार कुमारियां पवित्र रहे बहुत बड़ा त्याग है ऐसे उनको लगता है, इसलिए वो लोग कहते हैं ना कि वे जन्म जन्मांतर का तप हो तो ऐसा पवित्र योगी बन सकते हैं। लेकिन हम सबका अनुभव क्या है कि हम तो सहज ही बन गए, हमें कोई त्याग कोई मुश्किल महसूस नहीं होता है। हमें ये महसूस होता है कि वास्तविक जीवन अब हमारा बना। पर हमें हमारा जीवन अलौकिक ब्राह्मण जीवन ब्रह्मचर्य से शुरू होता है। सारी दुनिया सभी धर्म सभी संप्रदाय जहां आकर अटक जाते हैं, पवित्रता की बात पर आगे नहीं बढ़ पाते। बाकी सब शिक्षाएं वो सिखाते हैं, सच बोलो प्रेम से बोलो दया करो धर्म करो दान करो ये सब सिखाते हैं, पर पवित्र बनो ये कोई नहीं सिखा सकता है। तो जहां सभी आकर अटक गए हैं उस पवित्रता से हमारा जीवन शुरू होता है। हाँ, ये कितनी बड़ी शक्ति है। पर ये बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति है और हमारी मंजिल है संपूर्ण निर्विकारी बनना। हमारा लक्ष्य वो है। बाबा कहते हैं ना पवित्रता सन्यासियों जैसी नहीं, हठ दमन से पवित्र नहीं बनना। वो तो हठ दमन करते हैं ना, घर बार छोड़ते हैं, हठ क्रियाएं करते हैं, ऐसी दवाइयां लेते हैं, कन्या जैसी पवित्रता नहीं। कन्याएं पवित्र होने के कारण पूजन योग्य है इस कलयुग में भी, नवरात्रि के दिनों में अभी ही ये त्योहार गए, पर आज के समय में कोई अनमैरिड है माना पवित्र है ऐसा नहीं कह सकते, इतनी गिरावट आ चुकी है। अनमैरिड है पर पवित्र है ऐसा नहीं कह सकते, है ना। कलयुग में तो ऐसा ही है, आप लोग जानते हैं दुनिया की हालत अभी क्या है, और मानसिक मन की स्थिति, चलो कोई शरीर से पवित्र है पर मन की स्थिति और मन की खोज क्या रहती है। युवा बनने पर मन की खोज तो कोई देहधारी की ही रहती, कोई साथी मिले। इसलिए बाबा कहता है ऐसी पवित्रता नहीं, हमें पवित्र कैसा बनना है, देवताओं जैसा। देवी देवताओं जैसा पवित्र, जन्म भी पवित्र, जीवन भी पवित्र, शरीर छोड़ना भी पवित्र, मृत्यु का एहसास नहीं। जन्म लेते, जीवन जीते, शरीर छोड़ते, पवित्रता के कारण नष्टो मोहा, सुख अखंड। इसलिए तो अमर लोग कहते हैं जिसके अंग अंग कमल फूल समान, इसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहते हैं। कर्म में पवित्रता, ब्रह्मचर्य पर दृष्टि भी पवित्र, कानों से पवित्र ही सुनना, मुख से पवित्र ही बोलना, हाथ पांव से पवित्र कर्म करना, तो भक्ति में भी इसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहते। माना अंग अंग शीतल, कमल फूल, हर कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए कमल फूल समान। हमारा लक्ष्य ये है, बाबा कहते कोई भी इंद्रिय में चंचलता न रहे, शीतल, एक बार बाबा ने संदेशी को एक दृश्य बताया। बहुत बड़ा स्टेज था पर पर्दे बंद थे, तो संदेशी ने पूछा कि बाबा ये खोलो ना, तो बोला चलो अंदर। देखा तो सभी ब्राह्मण, शरीर नाम रूप ब्राह्मण संगम युग का, पर देवी देवताओं का ड्रेस पहनकर बैठे थे। तो संदेशी ने कहा बाबा ये तो सब सजे सजाए हैं, तो पर्दा खोलिए ना, सब देखें, प्रत्यक्षता हो। तो बाबा ने कहा कि और ध्यान से देखो। जो ध्यान से देखा तो हरेक की कोई ना कोई कर्मेंद्रिय हिल रही थी, किसी का कान ऐसे से हो रहा था, किसी का मुख ऐसे से हो रहा था, किसी की आंख ऐसे से हो रही। तो बोला बाबा ये क्या है। बोला अभी बच्चों की कोई ना कोई कर्मेंद्रिय चंचल है, अभी संपूर्ण नहीं बने, इसलिए पर्दा नहीं खोल सके। तो ये हरेक अपने आप को देख कर है ना, अपना पुरुषार्थ हमें करना है। अगर मुख चंचल है, कुछ भी बोल देते हैं, संयम नहीं है, तो उसको उस विषय में पुरुषार्थ करना है जिसकी दृष्टि, बाबा कहते हैं ना कि दृष्टि अगर दैहिक होती है तो उसे उसमें विशेष पुरुषार्थ करना। हाथों में कर्म में कंट्रोल अगर नहीं है तो उसको वो पुरुषार्थ करना। पर हमारा ये लक्ष्य है कि कोई भी कर्मेंद्रिय में विकार की आग न रहे, तो हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। और जब पर्सनालिटी बनने की बात है ना, हरेक की वैरायटी पर्सनालिटी है, कोई आनंद की पर्सनालिटी है कि वे ये हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, कभी इसका मूड ऑफ नहीं देखते, तो जैसे आनंद खुशी उनका ऐसा विशेष गुण है, तो वो आनंद की पर्सनालिटी, ये शांति की पर्सनालिटी है, कभी भी गर्म नहीं होते हैं। तो हरेक की वैरायटी पर्सनालिटी है, किस गुण में हम विशेष है हरेक अपने आप को जानते हैं। तो पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है? ज्ञान नहीं था तो फिजिकल पर्सनालिटी पर ध्यान देते थे, है ना। हरेक का लक्ष्य रहता है कि वे मेरी पर्सनालिटी बहुत प्रभावशाली, तो अपना हाइट वेट चेस्ट इस प्रकार से अपनी बॉडी रखते हैं कि फिजिकल पर्सनालिटी दिखाई देती, क्योंकि वो उसी बात में विशेष कॉन्शियस होते हैं, अटेंटिव होते हैं। तो हम बताते हैं ना कि हमारी पर्सनालिटी का साइकिल कैसे चलता है, कैसे बनता है। अगर हम प्यूरिटी की पर्सनालिटी चाहते हैं तो शुरुआत है कि जो भी इंफॉर्मेशंस देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके द्वारा जो इंफॉर्मेशंस हमारे अंदर जाती है, इसलिए कहते हैं ना ये जो कर्मेंद्रियां हैं वो कैसे, क्यों ज्ञानेंद्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा सही या गलत ज्ञान या इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में जाता है। तो उसे डोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, ये कर्मेंद्रियां जो है वो ज्ञान के द्वार कहे जाते हैं, ज्ञानेंद्रिया इसको कहते हैं, डोर्स ऑफ नॉलेज। पर रॉन्ग राइट कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। अब बाबा ने सद्विवेक हमें दिया है ना, बाबा के सत्य ज्ञान से सद्बुद्धि आती है, तो अपवित्र इंफॉर्मेशंस हम नहीं डालते, वरना ज्ञान नहीं था तो सुबह उठते ही कोई अखबार पढ़ते, कोई सुबह उठते ही टीवी ऑन कर देते, न्यूज सुनते, कोई सुबह उठते ही बस बैठ जाते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले गप्पे मारने लगते है ना, वो जल्दी नहाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे और बातें करेंगे। तो उनका तो सुबह उठते ही इनपुट कौन सा है, वेस्ट, नेगेटिव, अपवित्र। पर बाबा ने हम बच्चों को बताया कि रोज अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट इनपुट बाबा के ज्ञान का दो, सत्य का दो। तो मॉर्निंग से ही देखो, अमृत वेले हम उठते हैं और हमारी फर्स्ट गुड मॉर्निंग किसको? बाबा को। मन की आंख से रोज बाबा को देखते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं, बाबा से बातचीत करते हैं। तो मॉर्निंग से ही हम मन और बुद्धि को पॉजिटिव प्योर इनपुट देते हैं, ताकि मन और बुद्धि को राइट डायरेक्शन मिल जाता है चलने के लिए। और जो फर्स्ट इनपुट होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, उसकी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखो, सुबह उठते ही कोई ऐसा न्यूज आप सुनते हैं तो सारा दिन उसका असर रहता है। इसलिए लोग अपने आप को नहीं बदलते, पर कहीं कहते हैं ना कि सुबह उठकर किसका मुंह देखा, अरे बिल्ली सामने आ गई, है ना। अब बिल्ली को तो कुछ पता भी नहीं है बेचारी को, पर लोग हमेशा ये टेंडेंसी रखते हैं दूसरों को ब्लेम करने का, है ना, भाई किसका मुंह देखा। तो दूसरों को ब्लेम करते हैं, और हमारा कितना अच्छा है, सुबह उठते ही मन की आंख से बाबा को देखते हैं, बाबा से बातचीत करते हैं। इसके लिए जिसका रात्रि को सोना ठीक है, उसका अमृत वेले उठना भी ठीक हो जाता है। अगर रात को हम टीवी देखते देखते सो जाते हैं, अखबार देखते या कोई बातों में डिस्कस करते हुए, तो सुबह उठते ही फिर वापस उसी से मन बुद्धि लिंक हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज रात को सोने से पहले 3 मिनट 5 मिनट भी बिस्तर में बैठकर दिन भर के कर्मों का हिसाब देखकर और बाबा को बताकर, गलत हुआ वो नहीं करेंगे उस दृढ़ता करके, जो अच्छा हुआ बाबा का शुक्रिया करेंगे, और इस प्रकार दिन भर के हिसाब को समेट के बाबा की याद में सो जाते हैं। तो जो स्मृति लेकर आप सोएंगे उसी स्मृति के साथ उठेंगे। इसलिए बाबा ने हमारी दिनचर्या को ही ठीक कर दिया, टाइम से सोना और टाइम से उठना। 10:30 भी सो जाते हैं तो आराम से 3:30-4 बजे हम उठ सकते हैं, फिर भल दिन में 1 घंटा आराम कर लो। तो ये सब चेंज क्यों हम सब करते? क्योंकि हम अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशंस जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारा अटेंशन रहता है कि वो एक कान से सुना और दूसरे से निकलता नहीं है। दुनिया में तो ऐसे कहते हैं ना, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ, ऐसे ही सुनती हूँ, एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। पर निकलता है? निकलता है? हाँ बोलो। नहीं, बीच में अंदर जाता है ना, स्मृति में रह जाता है। इसलिए क्यों नहीं हम फिल्में गंदी देखते हैं, क्यों हम अश्लील किताबें ऐसी न्यूज़पेपर की कॉलम्स क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि जो कुछ आप पढ़ेंगे उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, है ना। देखो व्यक्ति जो फिल्म देखेगा वो डायलॉग बोलना शुरू कर देता है, होता है ना। उनके जैसे कपड़े पहनेंगे, उनके जैसे बाल रखेंगे, उनके जैसी चाल चलेंगे, मतलब कैसे हम अनोइंगली इम्प्रेस हो जाते हैं इन बातों से, पता भी नहीं चलता है। इसलिए हम ऐसी अश्लील, और आजकल देखो कई कहते हैं ना हम धार्मिक फिल्में देखते हैं, पर वो धार्मिक फिल्मों के एक्टर जो बनते हैं वो भी कौन है, हा? देवी देवता का ड्रेस पहन लिया पर है कौन? वही फिल्मी एक्टर्स है। तो हर एक की बुद्धि में तो आता है ना, पता है इसमें जो सीता बनी है वो कौन है। तो प्रभाव तो आता है ना, भाई गधा शेर का चमड़ा ओढ़ ले तो शेर हो जाएगा, हाँ। तो कलियुगी जीवन जीने वाले दैहिक कर्मों की एक्शन करने वाले देवता का ड्रेस पहन ले तो वो देवी देवता हो जाएंगे? नहीं। वो तो एक फर्स्ट है, पर हमारा तो कैरेक्टर, लाइफस्टाइल, आहार विहार है ना, वो तो उनका वही रहता है। इसलिए क्यों बाबा कहते हैं कि ये सब चीजें नहीं देखो, जब लक्ष्य है पवित्र बनना तो हमारी मनसा पर प्रभाव डालने वाली आहार दिनचर्या संग ड्रेस वंचन विहार ये सब हमारी मन की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं, तो हमें उनको चेंज करना होगा। अब आप सुबह शाम योग अभ्यास करते हैं पर दिनचर्या योगी की नहीं है, आहार विहार योगी का नहीं है, संग पहरवाइश योग के अनुरूप नहीं है, तो अवस्था बनेगी? नहीं बनेगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ योग अभ्यास लाइफ में ऐड नहीं करना है, वे जैसे जीते थे ऐसे ही जीते रहो, सुबह शाम योग कर लो, ऐसा योग नहीं है ये। हम योगी जीवन बनाते, जीवन मीन्स ये सब कुछ चेंज करना, सब में पवित्रता लाना। तो ये इन्फॉर्मेशंस हमारी मेमोरी में स्मृति में भर जाती है, स्टोर हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना जैसी स्मृति वैसी स्थिति, हमारी मनोस्थिति इसके आधार पर डेवलप होती। इसलिए इनपुट क्वालिटी, हम बेसिक बेस से ही चेंज क्यों लाते हैं? क्योंकि इससे ही हमारी स्थिति बनती जाती है, फिर ऐसे ही विचार बार बार आएंगे, है ना। जब कोई व्यक्ति के बारे में ऐसी ऐसी बातें आप सुनते हैं फिर क्या होता है? वो बार बार बुद्धि में आएगी, चिंतन में आएगी, क्योंकि हमारे संकल्पों को यही दिशा मिली है ना। इसलिए बाबा कहते हैं देखो भी नहीं और सुनो भी नहीं। हम इतने कैपेबल हो कि कोई बात का असर ना हो, पर असर तो होता ही है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जो जवाबदार है, निमित्त है, वो एक दो की बातें सुने है ना, और उनको सॉल्यूशन दे। पर अगर मैं निमित्त नहीं हूं तो मुझे ये व्यर्थ सुनने की आवश्यकता नहीं। अगर आप में शक्ति है कि आप उसकी कोई बात का निवारण कर सके, सही बना सके और अपने पर इफेक्ट ना हो, तो आप सुनिए। परंतु कहते हैं ना, जो कुछ हम देखते हैं पहले उस पर चिंतन चलता है, और जो मन में चिंतन चलता है वो मुख से बाहर आता है। तो हम इनपुट ही क्यों करें? फिर जैसी हमारी मनोस्थिति ऐसी हमारी वृत्ति बनती है। वृत्ति क्या है? बार 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 वो सोचते रहने से वृत्ति डेवलप हो जाती है। गीता में वो श्लोक है ना कि विषयों का बार बार चिंतन करने से वो विषयी वृत्ति बनती है। इसलिए यहां से ही बाबा कट कर देते, खत्म कराते हैं। दुनिया में हम रहते हैं तो आंख बंद करके तो नहीं जिएंगे, कान बंद करके तो नहीं जिएंगे ना। हमें कारोबार भी करना है, नौकरी धंधा भी करना है, गृहस्थी भी संभालनी है, आवश्यक दुनियादारी भी निभानी है। आप लोगों के तो मल्टीपल रोल है ना। हम लोग उस दुनिया से, हमारे कोई लौकिक रिलेशन नहीं है, तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, है ना। हम एक ही पक्ष अलौकिक सेवा में है। ये अलग बात है कि हम वहां से क्लियर होने के बाद भी व्यर्थ में रस ले तो वो मुझे ही नुकसान है, पर मेरा रोल तो नहीं है ना। आपका तो डबल रोल है। हाँ, इसलिए और रहना भी दुनिया के बीच है और कमल फूल बनना है। हम तो फिर भी यहां सेफ्टी के किले में बैठे। तो हरेक को खुद किस स्थान पर है, किस रोल में है, किस रेस्पॉन्सिबिलिटी में है, वो देख करके करना है ना। आप मुझे फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि मेरा तो, मैं तो मधुबन में सेफ्टी में बैठी। आप लोगों का रोल तो कीचड़ में कमल का है, तो आपको अपनी सेफ्टी बनानी। इसलिए करते हुए फिर जैसे आजकल कहते हैं ना, भी नौकरी पर जाओ जरूरी है, बाजार में कहीं आवश्यक है, पर आके फिर क्या करो, बार बार सैनिटाइज करो, है ना। ऐसे ही आपको वैरायटी रोल्स प्ले करने हैं, पर फिर सैनिटाइज करो मन और बुद्धि को कि नहीं, ओरिजिनली मैं कौन हूँ, किसकी बच्ची हूँ, अभी कौन सा समय है, क्या रोल है। अपने आप को फिर उस ओरिजिनलिटी में स्थित कर, नहीं तो फिर वो वृत्ति बन जाती है, फिर वैसी ही दृष्टि बनती है ना। अगर मेरी दैहिक वृत्ति है तो तो वही बार बार मेरी नजर में आता रहेगा। अगर मेरी वृत्ति आत्मिक है तो मेरी दृष्टि भी आत्मिक बनाने का पूरा पुरुषार्थ मेरा रहेगा। तो इसलिए बाबा बताते हैं ना कि जैसी स्मृति वैसी वृत्ति दृष्टि कृति कर्म भी ऐसे ही चलेगा और फिर आपकी सृष्टि आपकी लाइफ आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी ही बनेगी। तो पर्सनालिटी फॉर्मेशन इस रीति से। अब एक ही नेगेटिव इंफॉर्मेशन पूरी पर्सनालिटी को नेगेटिव बना देती है। इसलिए बाबा ने टोटल चेंज किया हमारी लाइफ। तो हम अपनी पर्सनालिटी को योगी और पवित्र बना सकते। तो ये हमारा अपने आप पर अटेंशन हो कि अगर मुझे पवित्रता की पर्सनालिटी बनना है तो मेरा सुनना देखना पढ़ना कर्म करना है ना बातचीत करना ये सब कुछ मुझे प्योर बनाना। और अंदर जो है मन में जो चलता है वही तो चेहरे से दिखता है ना। व्यक्ति वही होता है पर हम कहते क्या बात है आज बड़े टेंशन में लग रहे हो है ना। अभी उसने कुछ बताया भी नहीं पर जो मन में है वो चेहरे पर आ जाता है। इसलिए कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड है ना। व्यक्ति चिंता में है तो चेहरे से पता चल जाता है। खुश है अंदर अंदर तो भी चेहरे पे क्या बात है आज बड़े खुश नजर आ रहे। तो अंत तक नाम रूप तो यही रहेंगे ना हमारे जो इस अंतिम जन्म के हैं पर अंदर की मेरी आत्मा स्थिति मेरी मन बुद्धि संस्कार की स्थिति जितनी मैं शुद्ध बनाऊंगी उतना मेरे द्वारा पवित्रता सत्यता दिव्यता अंदर की खुशी आनंद अनुभव में आएगा। तो ये मौका है कि हमें ऐसा ग्रेट महान दिव्य श्रेष्ठ सतो प्रधान बनने का भी मौका है। बाबा ही करा सकते हैं अभी ही हो सकता है ना। और कोई युग में तो होगा नहीं ये और कोई आत्मा तो करा नहीं सकते। आज भी मुरली में कितना अच्छा पॉइंट था ना कि सब चाहते हैं एक धर्म हो एक राज्य हो एक भाषा हो एक मत हो पर ये एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक ही कर सकता है ना अनेक नहीं कर सकते वो बाबा ही कर सकता है। और यही संगम का समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ इसी टाइम बाबा कर सकते फिर और कोई युग में और कोई जन्म में चांस नहीं है। और इच्छाएं तो और जन्म में भी हम पूरी कर सकेंगे पर पवित्र दिव्य महान बनने की जो लक्ष्य है इच्छा है वो और कोई जन्म में नहीं हो सकता है। इसलिए खुद का खुद पर अटेंशन कि मुझे ऐसा बनना है। और रॉयलिटी एक इंटरनल संपन्नता से आती है। बाबा कहते हैं ना, जो लोग संपन्न हैं, उनकी किसी में भी नजर नहीं डूबेगी, ना आंख डूबेगी न बुद्धि डूबेगी, क्योंकि वो भरपूर है, तृप्त है, संतुष्ट है। तो औरों की चीज में उनकी नजर नहीं डूबेगी। तो हम आत्माएं भी ज्ञान से जितनी तृप्त बनेगी, संपन्न बनेगी, तो हमारी नजर कहीं भी नहीं डूबेगी, कोई की चीजों में भी नहीं, किसी के धन साधन में भी नहीं, शरीर में भी नहीं। जब बुद्धि नहीं डूबेगी तो हमारा उस दिशा में जाना ही नहीं होगा, हमारा टाइम भी नहीं जाएगा। बाबा शुरू से, दादी गुलजार बता रहे थे कि बाबा, हम लोग बच्चे थे, वो जो बाबा ने हॉस्टल खोला था ना, उसमें थे। उस समय बाबा हमारे अंदर रॉयलिटी के संस्कार डालते थे। बाबा हमें कहते थे कि क्वीन विक्टोरिया तुमको कहे कि मैं तुमको लंदन में ले जाती हूँ, तुम्हें राजा बनाती हूँ, महल में रखूंगी, तो तुम क्या जवाब देंगे? ऐसे बाबा उन बच्चों को सिखाते थे। माना किसी का भी धन वैभव में हमारी बुद्धि नहीं जाएगी, क्योंकि आत्मा को सत्य पता है कि वास्तव में सुख किस में है। संस्कारिता, रॉयलिटी मीन्स एक प्रकार से संस्कारिता। तो वो व्यक्ति प्रैक्टिकल में उसको किसी से मांगेगा नहीं, अपेक्षाएं नहीं होंगी, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए नहीं। जो हमें खुद की मेहनत से, योग्यता से हमें मिले, उसी में सुख है। सतयुग में बाबा कहते हैं ना, इच्छा मात्र अविद्या होगी, क्योंकि सर्व खजाने प्राप्त होंगे। बाबा कहते हैं देवताओं के खजाने में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, पर वो संस्कार अभी हमें डालने कि अभी मुझे इंटरनल कौन सी अनुभूति हो तो मेरी बुद्धि नहीं जाएगी। बाबा क्या कहता है, पाना था सो पा लिया। ये रियलिटी में हो, सिर्फ कहने के लिए नहीं, पर ये महसूस करो कि कैसे बाबा को पाने से हमने सब कुछ पा लिया। देखो बाबा के ज्ञान से, भगवान तो सत्य ज्ञान देता है। कई बच्चे कई बार कहते भी हैं और सोचते भी है कि बाबा तो बस ज्ञान ही देते रहते हैं, थोड़ा और भी कुछ दे दे, पैसे भी दे दे, हमारा काम कर दे। बाबा तो बस ज्ञान ही देते हैं, पर वास्तव में वो ही समय पर काम आता है। बाबा का ज्ञान सद्बुद्धि देता है। व्यक्ति के पास वेल्थ है पर विजडम नहीं है तो क्या होगा, गलत उपयोग करेगा धन का। तो विजडम भी इतना जरूरी है ना। देखो धन वैभव तो किसी को वर्षे में भी बहुत मिल जाता है ना, बाप दादा का इतना अच्छा बिजनेस तैयार मिल जाता है, पर अगर बच्चे में विजडम नहीं, संस्कारिता नहीं, तो कहते हैं ना करोड़पति भी रोड़पति हो जाता है, क्योंकि वो वेस्ट कर देता है। तो बाबा विजडम देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टाइम है, पर अगर एक्यूरेसी नहीं है तो टाइम वेस्ट करते रहे। कोई क्षण क्षण सफल करते और कोई टाइम वेस्ट। तो हर वेल्थ के साथ पावर चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज से सेंस आती है, सद्बुद्धि आती है, नॉलेज से पावर आता है। बाबा कहते हैं रियल नॉलेज इज पावर। आज सिचुएशन सबके सामने एक सरीखी आई कोरोना की, और कई चिंतित हो गए, दुखी हो गए, भयभीत हो गए, और जिनके पास रियल समझ थी वो अपने आप को लाइट रख सके, क्योंकि खुद खुद को सही बात समझाई, खुद ने खुद को सही सजेशंस दी। खुद को समझाना पड़ता है ना हर बात में। तो नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। आज कोई व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं दूसरों की बातों में, हमारी बुद्धि को कोई बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? हमें बाबा रोज ज्ञान दे दे करके पावरफुल मन सारक बना दी। अथॉरिटी आती है नॉलेज से। आज एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर सकता है, दूसरे को मेडिकली वो गाइड करता है। डॉक्टर बनने से उसमें विशेष क्या आ गया? नॉलेज। बाकी तो ह्यूमन बींग ही है ना, पर ये अथॉरिटी, भाई ये दवाई दे सकता है, ये ऑपरेशन कर सकता है, ये अथॉरिटी उसमें किस आधार पर आए? नॉलेज के आधार पर। तो नॉलेज एबिलिटी लाता है, नॉलेज अथॉरिटी लाता है, ज्ञान से योग्यता आती है। आज बाबा ने ज्ञान दिया कि आप भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, हर एक आत्मा है। इससे हमारे में आत्मिक दृष्टि से देखने की एबिलिटी आई, देह दृष्टि समाप्त हुई। क्यों? नॉलेज बुद्धि में, ज्ञान से ही स्टेटस मिलता है। ये ऑफिसर, ये क्लार्क, ये प्यून किस आधार पर? नॉलेज, सेंस, एबिलिटी, स्टेटस। तो बाबा हमें वो चीज देते हैं जिससे, जो बाबा कहते हैं ना, वे पढ़ाई से तुम राजाई पाते। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये रियलिटी है ना। ज्ञान योग की पढ़ाई से हम ऐसे योग्य बनते, ऐसे गुण डेवलप करते हैं, अपने आप में ऐसी एबिलिटी, योग्यताएं लाते हैं। व्यक्ति किसी के द्वारा, चलो पोस्ट पोजीशन पर आ गया, पर एबिलिटी नहीं है तो वो सक्सेस नहीं होगा, है ना। कई फर्जी डिग्री ले लेते हैं पर एबिलिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो प्रॉब्लम्स होंगे ही। इसलिए नॉलेज से गुण आते हैं, नॉलेज से योग्यताएं आती हैं, और बाबा की याद से हम अपने आप को बार बार एम्पावर करके इन योग्यताओं को स्थाई करते हैं, परमानेंट करते हैं। इसको पावर कहते हैं। वो पावर बन जाता है, शक्ति बन जाती है। इसलिए ये अपने आप को समझाना है कि साधारण मुझे नहीं बनना है, ये मौका है, ये समय है, और खुद भगवान मुझे बना रहा है, तो मुझे पर्सनालिटी बनानी, वो रॉयलिटी अपने आप में लानी। बाबा तो क्या बना रहा है, भाई देवता बनो और उसमें भी उच्च पद प्राप्त कर। अब बाबा उच्च पद के लिए कहें और हम कहें चलो भाई जो बन सकेंगे वो बन जाएंगे, हाँ। दुनिया में हर कोई अपने अपने जॉब में, फील्ड में क्या चाहते, प्रमोशन चाहते है ना, प्रमोशन चाहते हैं, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, मैक्सिमम अचीव करना चाहते हैं। वे जिला पंचायत परिषद में सभ्य हैं तो वो चेयरमैन बनना चाहेंगे, फिर एमएलए बनना चाहेंगे, एमपी बनना चाहेंगे, मिनिस्टर बनना चाहेंगे, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहेगा, और मुख्यमंत्री लोग भी तो ऊंचा प्रयास करते हैं ना। तो हम भी थोड़ा सा लेके आध्यात्मिकता में हम क्यों थोड़ा सा लेके बैठ जाए, तो हम बाबा के बच्चों को खुद अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचा बनाना है, अपने आप को समझाना है कि जब भगवान देने आए हैं तो हाँ पूरी प्राप्ति कर ले, है ना। बड़ा वंडर है ना कि जब सच में भगवान आते हैं तो वो भक्ति में लोगों को हम सुनाते हैं ना कि भाई एक सीट खाली है स्वर्ग में, तो वो लोग बहाना निकालते हम बच्चे क्या कर रहे हैं। इसलिए पर्सनालिटी, रॉयलिटी, डिविनिटी है ना, ये हमें गेन करना ही है, और फिर काम इजी। जब एक बार स्टेज बन जाती है फिर इजी है, फिर कोई मेहनत नहीं, हमने बैकग्राउंड बना लिया है। जो दुनिया में आधा कल्प भक्ति करने के बाद भी नहीं बना है ना, आज हम सबका वो बैकग्राउंड बन गया है कि हम पवित्र और योगी बन गए। अभी तो सिर्फ मास्टरी की बात है बस है ना, मेहनत की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि आपसे हर आत्मा को अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी। आप कुछ दे सकेंगे, है ना। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें भी आत्माओं को देना है, कुछ न कुछ देना है। इसलिए बाबा कहते सिर्फ मुख से ज्ञान नहीं दो, लेकिन उस स्थिति और अनुभूति में रहकर उन आत्माओं को प्राप्ति कराओ। जो प्राप्ति करेंगे वो आपकी प्रजा बनेगी, जो फॉलो करेंगे वो वारिसदार बनेंगे, जो सिर्फ एप्रिशिएट करेंगे महिमा गाएंगे तो वो भगत बनेंगे। कल की मुरली में ही था ना कि अच्छा अच्छा करेंगे, तो चलो हम अभ्यास करेंगे। सार रूप में क्यों बाबा बार बार कहता पांच स्वरूप को याद कर। हमारे स्वरूप तो ड्रामा में बहुत रहे हैं, वैरायटी है ना, घड़ी घड़ी हमारा स्वरूप मूड बदलता रहता है ना, पर जो हमारे श्रेष्ठ स्वरूप है उनको बाबा कहते हैं बार बार याद करो। तो खड़े हो जाइए। ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा ना, पांच स्वरूप को याद करेंगे। जब मैं कहूं अनादि स्वरूप मेरा ज्योति बिंदु आत्मा, आपको यहां बिंदु करना है हाथ से, मेरा अपना अनादि स्वरूप शुद्ध आत्मस्वरूप। आदि स्वरूप डबल ताजधारी देवता स्वरूप, ताज बनाओ, डबल ताजधारी देवता स्वरूप, द्वापर युग से पूज्य स्वरूप, ऐसा ऐसा एक दाता और ये वरदानी वरदाता। संगम युगी योगी स्वरूप, अंतिम फरिश्ता स्वरूप, अनादि स्वरूप शुद्ध ज्योति बिंदु आत्मस्वरूप, आदि स्वरूप सतयुगी देवता स्वरूप, ताज पूज्य स्वरूप, भक्तों के सामने मनोकामना पूर्ण करने वाला वरदानी स्वरूप। मेरा वर्तमान पवित्र योगी स्वरूप। ईश्वरीय संतान गॉडली स्टूडेंट स्वरूप। अंतिम फरिश्ता शरीर से यहां होते हुए मन बुद्धि से अव्यक्त डबल लाइट फरिश्ता। संगम योगी योगी स्वरूप। अब मुझे पाना है डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप। सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता स्वरूप। मुझे पहुंचना है वापिस घर अपने मूल ज्योति बिंदु आत्मस्वरूप। वापस घर जाना है नई दुनिया में आना है डबल ताजधारी जगत जीत देवता स्वर। द्वापर युग में पूज्य स्वरूप। बैठ आज सारे दिन में जो कुछ पढ़ाई की अभ्यास किया कौन सी बातें अंडरलाइन करेंगी वो अपनी डायरी में लिखेंगे आप। बाबा को सामने रखते हुए स्वयं के लिए कौन सी बातें विशेष अंडरलाइन करेंगी, खास अटेंशन देंगे। पिछले 3 दिनों से जो पढ़ाई तपस्या चली, आप स्वयं ही स्वयं पर ध्यान देना है। आगे का पुरुषार्थ खुद की जागृति से करना है। बाबा ने संपूर्ण ज्ञान, सत्य ज्ञान हमें दे दिया है। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने ऊंचे चिंतन से हर बात हमें समझाई है। मीठी दादियों ने, हमारे बड़ों ने निमित्तात्माओं ने हमें बहुत पालना दी है। जिससे अभी हम जो जितना बने हैं उसी का रिजल्ट है। बड़ों से लेकर ईश्वरीय परिवार ने हिम्मत दी, उमंग उत्साह बढ़ाया। हम यहां तक पहुंचे। अब बाकी रास्ता हमें तय करना है। मंजिल पर खुद की लगन और शक्ति से पहुंचना है। शेष कौन सा गुण, कौन सी शक्ति मुझे स्वयं में धारण करना जरूरी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करिए। स्थूल से सूक्ष्म में चलिए। सूक्ष्म वतन वासी डबल लाइट अव्यक्त रिश्ता संगम युगी ब्राह्मण जीवन सफल है, एक्यूरेट है, तो सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। आखिर सूक्ष्म से मूल स्वरूप में निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप में जाना है। भरपूर चैतन्य बीज स्वरूप गुण शक्तियों से संपन्न बीज रूप उच्च बिंदु आत्मा में सर्वश्रेष्ठ संभावनाएं समाई हुई है। असली घर में मूल निज स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप परम ज्योति बिंदु के सानिध्य में मैं ज्योति बिंदु सर्व बंधनों से मुक्त
तुझसे।